गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हुई है आज यहाँ जो महालक्ष्मी दीप यज्ञ महोत्सव शुरू किया गया है उसमें पधारे सभी भाइयों बहनों बालकों और बालिकाओं का हार्दिक अभिनंदन है। मुझे आशा थी कि काफी लोग आएंगे लेकिन कोई बात नहीं, आयोजनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच गुरुजी हमें अमृत बरसाने हम पर अमृत बरसाने आए हैं, ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है। इस अमृत की वर्षा हम सोचते हमारी इच्छा थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों पर बरती जाए लेकिन कुछ कारणवश शायद इतने लोगों के भाग्य में यह वर्षा लिखी है तो हम प्राप्त कर रहे हैं। श्री गुरु जी के जीवन के बारे में मैं ज्यादा वर्णन नहीं करूंगी, सिर्फ इतना ही बता दूंगी कि आप श्री राम जी शर्मा शांति कुंज हरिद्वार के गुरु जी के परम शिष्य हैं, परम प्रिय शिष्य हैं। आपकी शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है और आप तेलुगु के साथ हिंदी पर भी इनका एक क्षेत्र अधिकार है, ये मुझे परसों के प्रवचन में मालूम पड़ा। आपकी हिंदी भी बहुत शुद्ध है, आज ये हमारे सामने हिंदी में आप सब लोगों को इस यज्ञ का महत्व बताएंगे और जीवन जीने की कला इस विषय पर अपना विचार प्रकट करेंगे। हम जी तो रहे हैं लेकिन इस जीवन में हम जो ये दो चार बातें जो स्वामी जी बतलाएंगे हमको उनका सम्मिश्रण कर लें तो हमारा जीवन और ज्यादा बढ़िया हो जाए, ये कला हमें गुरु जी बताएंगे। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए माइक गुरु जी को देती हूँ कि वह अपनी अमृत वर्षा हम सब पर करें। बस धन्यवाद।
विशेष अवसर के दिन आप सब लोगों से मैं एक बहुत विचित्र बात बताने जा रहा हूं। विचित्र इसलिए कि हम लोग जन्मे तो भारत देश में हैं, कहलाते तो भारतीय हैं, लेकिन भारतीय सनातन धर्म भवन में बैठने के उपरांत भी अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो शायद हम लोग धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। शायद कुछ लोग जानते होंगे। हमारे भारतीय धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है गुरु परंपरा। किसी भी दूसरे देश में आप लोगों को गुरु परंपरा नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे भारत देश में अगर हम लोग जरा ध्यान दे सकें तो एक विचित्र बात यह मालूम होगी कि हम सभी जो हैं अपनी पीढ़ी के बारे में सोचने लगे कि हम लोगों की उत्पत्ति स्थान कहाँ है, कहाँ से हम पैदा हुए हैं, तो निश्चित रूप से किसी न किसी ऋषि से हम लोगों का संबंध होता है। इसी को हम लोग कहते हैं गोत्र। गोत्र के बारे में आप सब लोगों को मालूम है ना, किसी न किसी रूप में हम किसी न किसी ऋषि से संबंधित हैं। ये बहुत ही भाग्य की बात है कि हम लोगों का जीवन आज भी जो है किसी न किसी से ऋषि से जुड़ा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम वो ऋषि क्या थे, उस ऋषि के परंपरा में जो हम लोग पैदा हुए हैं, क्या हम लोग उस ऋषि की जो इज्जत करना चाहिए, जो मर्यादा देना चाहिए वो दे रहे हैं? तो शायद एक ही जवाब होगा, हमें मालूम तो हो पहले कि वो ऋषि करते क्या थे। सौभाग्य ये है कि हम लोगों के अंदर जिस रक्त का प्रसरण हो रहा है निश्चित रूप से हम उनके वंशज, ऋषियों के वंशज। लेकिन हम लोगों की जिंदगी में ऋषियों की विद्या का, ऋषियों की जीवन शैली का, ऋषियों के जीवन जीने के तरीके के बारे में अगर हम लोग सोचें तो एक ही बात है, नहीं मालूम। हम सब लोगों को एक बात मालूम है, जब हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में भेजते हैं तो हम लोगों का एक ही मकसद होता है कि वह कुछ सीखे, है ना, वो कुछ पढ़े, कुछ बन जाए, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील बने, बिजनेसमैन बने, कुछ बने जीवन में। वह बने तो अपने पैरों पे खड़ा हो, समाज के लिए कुछ करे। विद्या का मतलब तो यही हुआ ना कि हम कुछ सीखें। जो आदमी विद्या सीखने के पहले था, विद्या सीखने के बाद वह कुछ और हो जाता है। पढ़ने के पहले वह का एक अनपढ़ गवार व्यक्ति था, 10-12 साल पढ़ने के बाद वो इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, कुछ का कुछ बन जाता है, IAS ऑफिसर बन जाता है, IPS ऑफिसर बन जाता है, है ना। तो हम पढ़ें, कुछ विद्या सीखें, तो इसका मतलब है कि हम कुछ बने। और उस विद्या का सबसे बड़ी खूबी यह है कि हम अलग ढंग से जीने लगते हैं। जैसे इंजीनियर पढ़ने वाला लड़का जब इंजीनियरिंग विद्या सीख लेता है तो वो इंजीनियर बन जाता है, उसके जीवन जीने की शैली बदल जाती है ना। अगर डॉक्टरी पढ़ता है तो उसकी जीवन जीने की शैली बदल जाती है ना। अगर वो वकील बन जाता है, जज बन जाता है, पुलिस ऑफिसर बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है, बिजनेस करने लगता है, कुछ भी करता हो, होता यह है कि उसकी जीने की ढंग बदल जाता है। वह वैसे नहीं जीता है जैसा वह पढ़ने के पहले विद्या सीखने के पहले था। लेकिन आप लोग जरा सोचिए, सनातन धर्म के बारे में इतना विश्वास रखने वाले हम लोग, ऋषियों के वंशज वाले हम लोग, ऋषियों के द्वारा बताए गए विद्या के बारे में क्या जानते हैं? अगर जानते हैं तो हमारे जीने के ढंग में क्या फर्क आया? कुछ नहीं। आप कोई भी पूजा पाठ कर लीजिए, आप दुर्गा का उपासना कर लीजिए, राम की उपासना कर लीजिए, कृष्ण की उपासना कर लीजिए, आपके जीने के ढंग में कोई फर्क नहीं आता है, है कि नहीं? हम वैसे ही सोचते हैं जैसे सब सोचते हैं। हमारे जीवन के जीने के शैली में जो दुर्गा का उपासना करता है उसके जीवन की विधा, जो राम की उपासना करता है उसकी जीवन की विधा में, जो कृष्ण की उपासना करता है उसकी जीवन की विधा में, जो हनुमान की उपासना करता है उसकी जीवन की विधा में क्या कोई अंतर हम लोग पाते हैं? कुछ अंतर नहीं। हम वैसे ही थे जैसे हैं। लेकिन रामकृष्ण परमहंस की अगर जिंदगी में हम लोग देखें तो वो जिस देवता का उपासना करते थे उनका जीवन जीने का ढंग बिल्कुल बदल जाता था, बिल्कुल बदल जाता था। जब वे हनुमान को उपासना करते थे तो घर में नहीं रह पाते थे वे। पढ़े हैं ना आप लोग रामकृष्ण परमहंस की जीवनी। जब वे हनुमान को उपासना करते थे तो वो पेड़ पे जीते थे, खाना नहीं खा पाते थे, उछल उछल के चलते थे। आखिर उनके शरीर में इतना परिवर्तन आया कि 6 इंच की पूंछ भी उग आई उनकी, क्योंकि वे हनुमान की उपासना करते। उसी तरह जब उन्होंने जीसस क्राइस्ट उसकी उपासना करने लगे तो देवालय जाना उनको अच्छा नहीं लगता था, मंदिर जाना उनको अच्छा नहीं लगता था। भगवत गीता वो छू नहीं पाते थे। भगवत गीता अगर जब वे क्रिस्ट की उपासना करते थे, ईसा मसीह की उपासना करते थे, तो अगर उनको कोई गीता उनके हाथ में दे देता था तो उनका हाथ पीछे हटा देते, बाइबल देते थे, बहुत अच्छा लगता था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये उचित है या अनुचित है, मैं केवल इतना समझा रहा हूं आप लोगों को कि अगर हम भगवान की उपासना करते हैं, किसी देवी देवता का उपासना करते हैं, तो हम लोगों की जिंदगी में उस उपासना का प्रभाव पड़ना ही चाहिए। अगर उस उपासना का प्रभाव आपके जिंदगी में नहीं पड़ा तो इसका मतलब यह है कि आपने उपासना किया ही नहीं, केवल आप नखरे कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। बुरा मत मानना इस बात का, समझने की कोशिश करो। क्योंकि केवल मंदिर गए हम, लेकिन उस मंदिर में जिस देवता की उपासना करनी चाहिए वो उपासना हमने नहीं सीखा, तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जो बच्चा विद्यालय जाकर विद्या नहीं सीखा उसी तरह हम देवालय तो गए लेकिन देवता के बारे में बिल्कुल जहां के तहां रह गए। इसका मैंने बहुत सोचा कि इसका क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है कि पढ़ने वाला लड़का तो दिन ब दिन नई नई बातें सीखता जाता है, भले ही वह पहली कक्षा में हो, आज के दिन वो स्कूल गया तो कुछ सीख के आएगा, दूसरे दिन जाएगा तो पहले दिन से ज्यादा कुछ सीखेगा, तीसरे दिन गया तो पहले दिन दूसरे दिन के अलावा कुछ नया सीख के आता है। लेकिन हम रोज मंदिर में जाके क्या सीख के आते हैं, क्या सीख रहे हैं? तो ये पहला प्रश्न जो है यह भारतीयता के नाते, भारतीय होने के नाते, दोनों का अंतर जरा समझने की कोशिश करें। मैंने दो बातों का, दो शब्दों का प्रयोग किया है, एक भारतीयता, दूसरा भारतीय। भारतीय वह जो भारत में पैदा हुआ, बस भारत में आप पैदा हो गए तो आप भारतीय हो गए। लेकिन अगर भारतीय सनातन धर्म को आपने समझा और उस प्रकार जिया तो आप भारतीयता समझ गए। हम लोग भारतीय तो हैं लेकिन भारतीयता हम लोगों ने नहीं समझा। हिमालय में जिन गुरुओं के सानिध्य में मैं रहा, जिन गुरुओं से मैंने कुछ सीखा, जिनसे मैंने भारतीय होने के नाते भारतीयता सीखा, जरा शब्दों पर गौर कीजिए आप लोग। भारतीय होने के नाते भारतीयता मैंने उनसे सीखा तो मैंने एक ही चीज समझा, चाहे आप धर्म कहें, चाहे उसे भारतीयता कहें, चाहे भगवान की उपासना कहें, योग साधना कहें, नाम आप कुछ भी दे लीजिए, हम लोग केवल एक चीज जानते हैं, वह है जीवन जीने की कला। जिसने जीवन जीने की कला समझ लिया, उसने धर्म को जान लिया, उसने भगवान को जान लिया, इतना ही नहीं भगवान उसके वश में हो जाते हैं। यह समझिए आप लोग। अगर आप लोगों की इच्छा हो, अगर आप चाहें कि हम लोग भारतीय नहीं, भारतीय कहलाने के अलावा भारतीयता भी जाने, तो आप लोगों को दो चीजों के बारे में जानना बहुत बहुत जरूरी है। एक है यज्ञ का विज्ञान, दूसरा है मंत्र का विज्ञान। भारतीय धर्म के ये दो आधारशिलाएं हैं, बस केवल दो ही आधारशिलाएं हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं बस दो ही, इतना बड़ा धर्म जिसे हम सनातन कहते हैं, पता नहीं कब से है, केवल इस कलयुग में नहीं, इस कलयुग के पहले द्वापर युग था, द्वापर युग के पहले त्रेता युग था, त्रेता युग के पहले सतयुग था, लाखों साल का अंतर है, करोड़ों साल का अंतर है, लेकिन इतना ही नहीं, इसके पहले और युग थे, युग के बाद युग, युग के बाद युग, एक महायुग के बाद दूसरा युग आते चले चले जाते रहे, लेकिन यह धर्म बदला नहीं, न कभी बदलेगा। दिन प्रतिदिन लाखों लाखों युगों से आते रहे, लेकिन हमेशा एक ही चीज होता रहा, सूर्य उगता रहा, सूरज ढलता रहा, सूरज उगता रहा, सूरज ढलता रहा, चाहे हजारों साल बीत जाए, करोड़ों कल्प बीत जाए, लेकिन एक चीज नहीं बदलेगा, सूरज उगता रहेगा, सूरज ढलता रहेगा, दिन बदलते रहेंगे, उसका चाहे आप जो भी नाम दे दें। तो संपूर्ण सनातन धर्म के आधारशिला केवल दो बातों पर आधारित है, जैसे मैंने कहा यज्ञ, यज्ञ का विज्ञान यानी सूरज की चाल, सूरज किस तरह चलता है, सूरज क्यों उगता है, क्यों ढलता है, क्या वास्तव में सूरज उगता है या सूरज के चारों ओर पृथ्वी चूंकि चक्कर काट रही है इसलिए हम लोगों को लगता है कि सूरज उग रहा है, सूरज ढल रहा है। तो सूरज के बारे में जो ज्ञान है वह असली यज्ञ विद्या है। भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय में भले ही स्पष्ट रूप से कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम्, इस योग विद्या को मैंने सबसे पहले सूरज को बताया। सूरज की चाल, 12 महीनों में जो सूरज उगता रहता है, 30 दिन ढलता रहता है, एक एक महीने सूरज एक एक राशि में रहता है, मेष राशि में एक महीना, वृषभ राशि में एक महीना, इस तरह 12 राशियों में 12 तरीके से रहता है। तो ये 12 तरीके से जो सूरज का 12 महीने की चाल है ये भागवत में बताया गया है, इसलिए भागवत में 12 स्कंद है। एक एक स्कंद में यह बताया गया है कि आप एक एक महीने में किस तरह जिए, जैसे इस महीने में कार्तिक मास में आपको कैसे जीना है, दीपक जलाकर जीना है। इसके पहले वाले महीने आश्विज मास में कैसे जीना है, आपको दुर्गा की उपासना करनी है। इसके बाद वाले महीने में आपको क्या करना है, कृष्ण की उपासना करना है। मासानाम मार्गशीर्षम। भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, बारहों महीने एक तरफ, गलत मैंने कहा, बारहों महीने नहीं, ग्यारह महीने एक तरफ, बारहवा महीना मार्गशीर्ष एक तरफ जो आने वाला है। मासानाम मार्गशीर्षम, अंग्रेजी महीनों के तरह से अगर गिनती किया जाए तो वो जो है दिसंबर में पड़ता है। तो ये तीन महीने सनातन धर्म के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व के दिन हैं। अगर हम लोग अपने अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से चले तो ये महीने पड़ेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर में विजयदशमी आता है, दुर्गा की उपासना हम लोग करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, मां की उपासना करते हैं, मातृशक्ति की उपासना करते हैं। लेकिन अगर हम मातृशक्ति की उपासना किए होते अक्टूबर में, तो क्या होना चाहिए हम लोगों की जिंदगी में? शक्ति का आविर्भाव होना चाहिए, हम लोग विशेष शक्ति संपन्न होना चाहिए। क्या हम लोग हुए? क्या हम लोगों ने जो दुर्गा नवरात्रि का उपासना किया उसमें दुर्गा की वह शक्ति आई? कौन सी शक्ति? जब महाभारत की लड़ाई हो रही थी, बस अगले दिन महाभारत का युद्ध होना था, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा दुर्गा की उपासना करो। बिना दुर्गा का उपासना किए हम लोग कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकते, जिंदगी की कोई भी समस्या का हम हल नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आपको शक्ति मिल गई तो आपको क्या करना चाहिए? दीप से दीप जलाना सीखो। क्योंकि तुम शक्ति संपन्न हो इसका यह मतलब नहीं कि आप जो है दूसरों का गला पकड़ लीजिए, दूसरों से कहिए नहीं मैं जो कहता हूं वो करो। क्या करना चाहिए? तुमने जो शक्ति पिया पाया मां से, इस महीने में शिव के रूप में कार्तिक मास में शिव की आराधना, इस महीने में शिव मतलब वह जो मंगलकारी है, वह जो शुभ कार्य है, वह जो सबका मंगल करता है। कहते ना औघड़ दानी भोले बाबा, जैसे भगवान भोला है तो वो तो सर्वज्ञ है, वो भोला कैसे हो सकता है? लेकिन इतना सर्वज्ञ होते हुए भी, सर्वसमर्थ होते हुए भी वो इतना भोला ही कहना होगा। हालांकि वो भोला नहीं है, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वसमर्थ है, क्या वो भोला हो सकता है? लेकिन फिर भी वो इतना हम लोगों के लिए इतना प्यार है कि जो मांगो वो दे देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास शक्ति है, नहीं तो जो मांगे वो कैसे दे देगा? जिसके पास है ही नहीं वो क्या देगा? तो शक्ति उपासना के बाद क्या होना चाहिए? बांटना सीखो, देना सीखो। दूसरों के जीवन में तुम्हारे शक्ति से उजाला हो, उनका दुख दूर हो। तो क्या हुआ? एक तरीके से हम लोग भी शिव हो गए, हम लोग भी दूसरों की मंगल कामना करें, दीप से दीप जलाएं, अंधेरा को दूर करें। इसलिए कार्तिक मास में दीपक जलाने की बहुत ही अच्छी प्रथा है। लेकिन दीप तो हम लोग जला लेते हैं, लेकिन भगवान जाने हम लोगों का ज्ञान दूर हुआ कि नहीं, भगवान जाने उस दीप का प्रभाव हमारे दिल में हुआ कि नहीं। गीता प्रेस गोरखपुर, आपने सुना होगा ना गीता प्रेस के बारे में। हमारे समझ में सनातन धर्म की सेवा करने वाले उससे बड़ा कोई संस्थान नहीं है। उसका जो संस्थापक जी थे तो एक बहुत बड़े जमींदार थे, अपने बड़े भाई भाभी के साथ वो रहते थे, शादी उनकी हुई नहीं थी। जमींदार थे तो जाहिर है जमींदार के साथ साथ, जमींदारी के साथ साथ थोड़े बहुत आदतें होती हैं ना, छुटपुट आदतें, वो सभी आदतें थी उनके जो जमींदारों में होती हैं। तो शिकार भी जाते थे और काम भी करते थे। कब जाते थे, कितने दिनों के बाद वापस आते थे नहीं मालूम, लेकिन एक दिन वो शिकार पे गए, तीन चार दिन के बाद लौट के आए घोड़ा पे थके हारे। शाम का समय था, उनके बड़े भाई की लड़की उनके भाभी से यानी अपने मां से कह रही थी शाम के समय, मां अंधेरा हो रहा है और अब दीपक तो जला नहीं। वो बच्ची तो किसके बारे में कह रही थी कि तुलसी के बारे में कह रही थी कि तुलसी के सामने अभी तो दिया जला नहीं। घोड़े पे आके थका हारा यह व्यक्ति सुना उस बात को, अचानक उसके जीवन में उजाला हो गया, बदल गया, वो सारे बुरे आदतें खत्म उस दिन से, उसके जिंदगी में दीपक जला। क्या उस तरह का दीपक हम लोग जला पाते हैं? मैंने ये कहानी सुनी थी जब मैं काशी में था, तो राम रमापति बैंक एक है वहां पे, आप लोगों ने सुना उसके बारे में। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था रसायन शास्त्र में, इलेक्ट्रिकल मिस्ट्री में, तो मैं अक्सर उनके पास जाता था। वो क्या करते थे, वो जो है लोगों को लोन देते थे। लोन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, क्या करते हैं उसको, ऋण देते थे ब्याज के साथ। कौन सा ऋण देते थे, वो राम नाम का ऋण देते थे, राम रमापति बैंक। तो किसी को कोई समस्या आ गई तो कहते थे अच्छा बेटा तू 20,000 राम नाम ले ले हमसे, जब तुम्हारी समस्या सुलझ गई तो करना क्या, तो 20,000 राम का नाम तो मैंने दिया ना, उसके साथ तुम 5,000 नाम और लिख दे और 25,000 राम नाम हमें दे दे। यह था राम रमापति बैंक। आप लोगों ने सुना होगा जब सुनील दत्त का लड़का, मालूम है आप लोगों को सुनील दत्त का लड़का का नाम, शायद नहीं मालूम, शायद आप पिक्चर नहीं देखते हो कि जानते हैं आप लोग, लेकिन रुक्मिणी के पिताजी का नाम मालूम है आपको, लेकिन सुनील दत्त के बच्चे का नाम हम लोगों को मालूम है। जय हो भारतीय सनातन धर्म की। तो जब संजय दत्त पोटा में गिरफ्तार हुआ, आप लोगों को शायद मालूम हो, तो सुनील दत्त का एमपी थे, छुड़ा नहीं पाए, तब वो गए राम रमापति बैंक, 2.5 करोड़ राम नाम का जो है लोन लिया। जो लोन लिया तीसरे दिन वो जेल के बाहर आ गया। उसके बाद पता नहीं 2.5 करोड़ के लिए उन्होंने कितना ब्याज दिया, कैसा ब्याज, भगवान के नाम की ब्याज। मैं इसलिए बता रहा हूं ना कि भगवान का नाम की कीमत हम लोग समझते हुए भी क्या हम उसका उपयोग कर रहे हैं। आज ही के दिन, आज ही के समाज में वाराणसी में भगवान के नाम की बैंक चल रहा है। अगर आपको कोई समस्या हो तब भगवान के नाम से आपकी समस्या हल कर लीजिए। क्या आप लोग करने के लिए तैयार हैं? नहीं, किसी के पास जाएंगे क्या करेंगे? मेरा कहने का यह तात्पर्य है ना कि भगवान का नाम यानी मंत्र जप, और उस मंत्र जप से दिए जलाने का टेक्निक यज्ञ विद्या। अगर ये दोनों हम लोग समझ गए तो आपके जीवन में सोचने की किसी की जरूरत ही नहीं। हम लोग समझते हैं पढ़ लिख के हम धन कमाते हैं, बिल्कुल नहीं। धुनी वाला बाबा के बारे में आपने कभी सुना? 1860 से 1911 तक वो जीवित थे नर्मदा नदी के किनारे। उनकी एक बड़ी विचित्र आदत थी, आपको सुनकर शायद अचरज होगा, उनको बड़ी विचित्र आदत थी, वे मर जाते थे फिर जिंदा हो जाते थे। तो विचित्र आदत, विदेशी हुकूमत के उस समय के कलेक्टर इस बात के साक्षी थे कि हां ये बाबा मरता है फिर जी जाता है, तो खेल था उनके लिए, मरता था जी जाता था। कभी जाइएगा मध्य प्रदेश में उनका आश्रम है आज भी। ये सब हम लोग नहीं सोचते कि मर के जीने की कला जो जानता हो, जिस धर्म में इतनी अद्भुत टेक्निक्स हो, भारतीय होकर भी भारतीयता ना होने के कारण हम लोग यह भी भूल गए कि इस तरह की संभावना है। सुनते हैं तो हम ही लोगों का अचरज होता है, विदेशियों की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन अचरज करने की कोई बात नहीं। अगर आपने यज्ञ विद्या जाना, आपने मंत्र विद्या जाना, मंत्र विद्या मतलब भगवान के नाम की महिमा, यज्ञ विद्या मतलब भगवान के नाम से दिए से दिए जलाना, जो भक्त नहीं वो इस मंत्र विद्या के देने से भक्त हो जाता था। जैसे वाल्मीकि पहले डाकू था, जब उसको राम का नाम मिला महर्षि हो गया, है ना। तो यह विद्या सीखने के लिए मैं आप लोगों को याद दिलाने के लिए कि नहीं, हमारे जीवन में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। हम लोगों की समस्याएं चाहे आर्थिक हो, चाहे बेटे की शादी हो, चाहे बिजनेस में हम जितना लाभ चाहते हैं उतना लाभ ना आता हो, तो ये टेक्निक का उपयोग कीजिए। घर घर में जो है अगर इस टेक्निक का प्रचार हो जाए, देखने में तो ये बहुत साधारण लगता है, बहुत साधारण, क्या है इसमें, केवल 12 चीजें हैं, 5 दिए हैं और 5 अगरबत्तियां हैं। लेकिन ईंट के बारे में आप एक चीज याद रखिए कि शिरडी साई हमेशा अपने सिरहाने के पास एक ईंट रखते थे, अगर सोते थे तो उनका सिर ईंट पे रखते सोते थे, चलते थे तो उनके हाथ में ईंट रहता था, अगर कहीं बैठते थे तो उनका हाथ ईंट पे रहता था। तो उनसे लोगों ने पूछा कि साईं आखिर आप ये ईंट क्यों रखते हैं अपने पास, तो उन्होंने एक ही बात कहा, ईंट यानी गुरु का अनुग्रह। यह हमेशा आप याद रखिए, ईंट यानी गुरु का अनुग्रह। एक गोल सा पत्थर हो इस तरह का, तो उसे हम क्या कहते हैं, पत्थर नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, भूल गया मैं, कभी देखा आपने इस तरह का पत्थर को कहीं, क्या कहते हैं उसको, है ना। तो वो पत्थर है या विष्णु की प्रतिरूप है ना, पत्थर नहीं है वो, विष्णु की प्रतिरूप है। देखने में अंतर, अगर आप उसे ईंट कहें तो ईंट है, अगर आप समझ सके तो वो क्या है, गुरु का अनुग्रह है। तो मैं चाहता हूं कि आपके घरों में इस महान गुरु परंपरा का फिर से चलन शुरू हो जाए। हम लोग भूल गए हैं इसको, हम लोग भूल गए हैं कि हम लोगों के परिवार में एक गुरु होना जरूरी है। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो रातों रात उनको जो है गोकुल भेज दिया गया, क्योंकि कंस उसको मार डाले। लेकिन जब कृष्ण का नामकरण संस्कार होना था तो जिससे चाहे उससे नामकरण संस्कार उस समय नहीं लिया गया, क्योंकि नामकरण संस्कार कुल गुरु के कहने के अनुसार होना चाहिए। तो जब कृष्ण का नामकरण होने को था तो गर्ग महर्षि चोरी छिपे गोकुल के एक गौशाला में एकांत में कृष्ण का नामकरण किया। मैं क्यों ये बता रहा हूं आप समझ रहे ना, हम लोगों को कोई कुलगुरु नहीं, ऐसा कोई नहीं है जिसे आप कह सकें कि इस परंपरा के हम हैं। हालांकि आपका गोत्र है, आपका ऋषि परंपरा है, और ऋषि परंपरा है तो निश्चित रूप से उस ऋषि परंपरा का कोई ना कोई वारिस अभी भी होगा। लेकिन किस गोत्र का कौन सा वारिस आजकल है जो इस परंपरा को जीवित कर सके, हम लोग नहीं ढूंढ सकते। तो हम लोग एक ही काम कर सकते हैं, ईंट के सहारे शालिग्राम के सहारे जिस तरह हम लोग विष्णु के पास पहुंच सकते हैं, इन 12 ईंटों के सहारे एक यज्ञ कुंड बनाकर आप अपने कुल गुरु को ढूंढ सकते हैं। अगर गुरु की अनुकंपा हो गया तो हम लोगों का शास्त्र कहते हैं देवता अगर रूठ जाए तो आपको गुरु बचा लेगा, लेकिन अगर गुरु रूठ गया आपको कोई नहीं बचा सकता। गुरु की रूठने की बात तो दूर, गुरु है ही नहीं तो रूठने का सवाल कहां पैदा होता है आप पूछ सकते हैं। ये तो और बुरी बात हो गई, हम सब लोग निगुरु हो गए, बिना गुरु के हो गए। एक समय भारत देश में निगुरा कह देने से वो बहुत बड़ी गाली समझी जाती थी, मतलब ये ऐसा आदमी है जिसका कोई मार्गदर्शक ही नहीं है, जो ये सिखाने के लिए ही नहीं है कि कम कर्म उचित है क्या उचित नहीं है। तो मैं चाहता हूं आज से आप अपने घरों में ये 12 इंटे रखना शुरू कर दीजिए। मैं कब से रखूं, कई लोग हमसे कहते हैं आप एक अच्छा मुहूर्त बताइए, आप आके दीक्षा दे दीजिए गुरु जी। मैं कौन होता हूं दीक्षा देने वाला, दीक्षा देने वाला तो आपका गुरु है। तो आपका गुरु कहां है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै कहां है? यह मत पूछिए कि गुरु कहां है, यह पूछिए कि गुरु कहां नहीं है। अंतर समझ में आया? अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत् पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। ऐसे गुरु को जो सर्वांतर्यामी है, तो उसे आप ढूंढने मत जाइए, उसके सामने समर्पण करना सीखिए। तो कैसे समर्पण करेंगे? हर महीने समर्पण कीजिए, पूरे साल समर्पण कीजिए, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, हम लोगों ने 12 महीने हमें गुरु का अनुग्रह चाहिए, इस भावना से इस यज्ञ कुंड का हम निर्माण करते हैं। क्या ये केवल यज्ञ कुंड ही है? कई लोगों ने हमसे पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि यज्ञ कुंड गुरु का स्थान है, गुरु का अनुग्रह मिलता है। तो हमने कहा सिर्फ पूछिए, आज के जमाने में एक समर्थ सदगुरु अगर कोई हुआ है वो सिद्धि साई है। तो साई की जीवनी में आप पढ़िए, जब साई शिरडी आए तो शिरडी के लोगों ने वहां के एक गणाचार्य से पूछा कि ये कौन है। तो गणाचार्य ने समाधि में जाके कहा कि फलाने जगह खोदो। आपको मालूम है खोदने से क्या मिला? वहां पे कुछ ईंटें मिले, 4 दीपक मिले, कुछ पूजा सामग्री मिले, कुछ प्रसाद मिला। तो बाल साई से, युवा साई से लोगों ने पूछा कि महाराज ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये मेरा गुरुस्थान है, कृपया ढक दो। तो गुरुस्थान में, साई के गुरुस्थान में क्या थे? ईंट थी, 4 दिए थे, पूजा सामग्री थी, एक जपमाला था। पढ़िए फिर साई से कृपा। तो केवल यहां पे आपके सामने भी ईंटें हैं, मंत्र का जप आप लोगों ने किया, लेकिन दिए 4 नहीं 5 हैं। क्यों? गुरु परंपरा में शिरडी साई के गुरु 4 दिए, हम लोगों के गुरु शिरडी साई के 7। तो 5वां दीपक कौन हुआ? साई का अनुग्रह। तो अगर ईंटे दीपक और जप माला शिरडी साई का गुरुस्थान हो सकता है, तो क्या वह हम लोगों का गुरुस्थान नहीं होगा? होना ही पड़ेगा उसको, है कि नहीं? तो मैं यह चाहता हूं कि जब आप ये ईंटे और ये दीपक अपने घर में प्रतिरोज हर रोज जलाएंगे तो क्या होगा? निश्चित रूप से आपके घरों में आपके कुल गुरु का आशीषों का वर्षा होगा। और बहुत बड़ी खूबी यह है कि आज के दिन, इस महीने के दिन गुरु का महीना कह सकते हैं। क्यों? गुरु वह जो अंधकार को दूर भगाए। और इस पूरे महीने में हम लोग दीपक जला के यथा साध्य जहां तक हो सके अंधकार भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कोशिश में आप सभी भागीदार हों, गुरुओं का अनुग्रह आपको मिले, इसके साथ साथ महालक्ष्मी की उपासना आप करें, गायत्री मंत्र का जप करते हुए सद्बुद्धि पाएं आप, उस सद्बुद्धि को धन कमाने में लगाएं और उस धन का आप सदुपयोग करें गुरु के अनुग्रह से, ऐसी हमारी इच्छा है। भगवान करें आपके जीवन में गुरु की अमृत वर्षा हो, गुरु की आशीषें आपके ऊपर बरसें। जय गुरुदेव।